الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال الله تعالى في مقام آخر: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو اس کلاس کے اندر ہم اپنے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی جو سلسلہ دروس ہے امور خانداری میں، اس میں انتظام، اس میں سے رشتہ داریاں نبھانے کا موضوع پڑھ رہے ہیں، ریلیشن شپ مینجمنٹ. اور اس میں آخری بات جو پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھی تھی، پوائنٹ نمبر 7 تھا، پیج نمبر 141 کے اوپر، کہ عورتوں کو یا بیویوں کو نصیحت کرتے ہوئے حضرت نے فرمایا تھا کہ اپنے خاوند کو کبھی اپنے اور سسرال والوں کے درمیان کے جھگڑے میں ڈراگ نہ کریں، یعنی گھسیٹیں نہیں، بلکہ اپنے معاملات کو خود سے سنبھالیں، اپنی نند کے ساتھ، اپنی ساس کے ساتھ، اپنی ایکویشن کو خود ٹھیک کریں، اپنے خاوند کو اس میں نہ کھینچیں. تو اس میں پھر بات چل پڑی تھی کہ اس میں سب سے اہم جو نقطہ ہے یا کی ورڈ ہے وہ ہے ٹھیک کریں. تو ٹھیک انسان کسی چیز کو اسی وقت کر سکتا ہے جب اس کو ٹھیک کرنا آتا ہو، جب اس نے ٹھیک کرنا سیکھا ہو. تو بات پھر وہی آ گئی کہ علم حاصل کرنا پڑتا ہے، ہر چیز کے لیے علم حاصل کرنا پڑتا ہے. بغیر علم حاصل کیے ہوئے انسان کچھ بھی ٹھیک نہیں کر سکتا، بلکہ بغیر علم کے خراب کر سکتا ہے، ٹھیک نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کوشش کریں کہ بی اے گیور ناٹ اے ڈیمانڈر، کہ اگر ساس سسر کے پاس اور کوئی جگہ رہنے کی نہیں ہے تو آپ انہیں آفر کریں کہ آپ میرے پاس آ کر رہیں، آپ کا میرے پاس رہنا میرے لیے باعث سعادت ہے، مجھے خدمت کا موقع ملے گا. ٹھیک ہے، تو اس پہ بھی کافی ساری بات ہوئی تھی کہ بھئی خدمت کے لیے انسان کو تیار رہنا چاہیے، اور جیسے ہی کوئی موقع ملے، مناسب صورتحال پیدا ہو تو آفر بھی کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی زبان سے خدمت کی آفر بھی کر دینی چاہیے، لیکن دل میں ارادہ تو ہمیشہ رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس میں ایک نقطہ بیان کیا تھا کہ ایسا کیوں ہونا چاہیے، یہ کسی کو یاد ہے کہ دل میں خدمت کا ارادہ تو ہر وقت ہونا چاہیے؟ اس کی وجہ ایک پچھلی کلاس کے اندر بیان کری تھی، وہ کسی کو اگر یاد ہو تو ذرا بتا دیں. دل میں خدمت کا ارادہ ہر وقت ہونا چاہیے، لیکن آفر جو ہے وہ تو حالات کے حساب سے کرنا چاہیے. تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ بیان کری تھی، نیکی کے ارادے پہ ایک نیکی ملتی ہے. تو ہاں، ارادے پہ نیکی ملتی ہے، کرنے کے بعد تو پھر 70 نیکیاں ملتی ہیں، یا کم از کم 10 نیکیاں ملتی ہیں جب کر لیتا ہے انسان. اچھا نہیں، دوسری جو بات اس سے زیادہ اہم بیان کری تھی وہ یہ تھی کہ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے. جی، عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے. تو دل میں اگر خدمت کا ارادہ ہی نہیں ہوگا تو پھر خدا کیسے ملے گا؟ کیا مطلب کہ دل میں اگر ایسا ہے کہ نہیں نہیں مجھے کچھ نہیں کرنی، خدمت مت، ٹھیک ہے، مجھے تو خدمت کرنی ہی نہیں ہے، اور خدمت کے بارے میں دل میں کوئی منفی جذبات ہوں، نیگیٹو خیالات ہوں، تو پھر خدا کیسے ملے گا؟ ٹھیک ہے، ये बात जी अल्लाह ताला ने आप लोगों की बरकत से क्लास के दौरान ही दिल में डाली थी, और वो आपके सामने फिर साजिश ने अल्लाह के हुक्म से डिलीवर भी कर दी। ठीक है, वरना इससे पहले कभी खुद भी नहीं सोचा था इस तरह से। यानी ये बात तो बहुत सुनी थी, अपने हजरत से ही सुनी थी कि खिदमत से, इबादत से जन्नत मिलती है, खिदमत से खुदा मिलता है, लेकिन ये नुक्ता कभी भी दिल में नहीं आया था कि अगर किसी इंसान के दिल के अंदर खिदमत के खिलाफ जज्बात होंगे, ऐसे यानी एक होता है ना बेजारगी वाली कैफियत होगी कि नहीं कोई नहीं, मैंने तो करनी नहीं है खिदमत, और खिदमत करने से कोई फायदा नहीं होता, और खिदमत करना जो है वो उससे तो उल्टा गले पड़ जाता है मसला उस बारे। तो फिर ऐसे बंदे के लिए तो फिर खुदा का ठीक है, ऐसे तो फिर उसको कहाँ से खुदा मिलेगा। अच्छा, अगला पॉइंट जो आज पढ़ना था, पॉइंट नंबर 9 है पेज नंबर 142 के ऊपर, कि अगर वो आपके ऊपर सख्ती करें या कोई और ऐसी बात करें तो आप टर्न टू अल्लाह करें। यानी ससुराल वाले लोग आपके ऊपर सख्ती करें या कोई ऐसी उल्टी सीधी बातें करें तो आप अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो करें, क्योंकि अल्लाह ताला दिलों को नरम करने वाले हैं। अल्लाह से दुआ करें, और अगर अपने खाविंद को बताना भी पड़े तो बहुत पोलाइटली शाइस्ता अंदाज में अपने खाविंद को ये बात बताएं। ठीक है, सबसे अच्छा तो यही है कि खुद ही हैंडल कर लें, और सीखा होगा तो फिर आप अच्छे से हैंडल कर लेंगे, और हो सकता है कि उनकी सख्ती जो है वो नरमी में अल्लाह ताला तब्दील फरमा भी दें आपके अच्छी हैंडलिंग की वजह से। लेकिन अगर खाविंद को ये बात बताना भी है जो कि बता देना चाहिए, ठीक है, यानी ऐसा नहीं बिल्कुल ही कि उससे छुपा के रखें, लेकिन बताने का तरीका जो है ना वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, जैसे पिछली क्लास में बात हुई थी कि भाई खाविंद से इल्म हासिल करें। ठीक है, इंसान जो अकलमंद इंसान होता है वो हर जगह से इल्म हासिल करता है। ठीक है, यानी हर हर जगह से मुराद ये नहीं है कि मतलब गलत जगह से इल्म हासिल करना शुरू कर देता है, लेकिन इल्म उसको जहां भी नजर आए, फायदे वाला इल्म, नफे वाला इल्म उसको जहां भी नजर आता, यानी मिलता हुआ नजर आए, वो वहां से इल्म हासिल करता है। ठीक है, वो ये नहीं कहता नहीं मैं उससे क्यों इल्म हासिल करूँ, इससे क्यों इल्म हासिल करूँ, कि वो तो छोटा है तो मैं छोटे से इल्म क्यों हासिल करूँ, वो तो मोटा है मैं मोटे से क्यों इल्म हासिल करूं, और वो तो मेरा दोस्त नहीं है तो मैं उससे क्यों। भाई दुश्मन से अगर आपको फायदा मंद इल्म मिल रहा है तो इल्म हासिल करें ना उससे। ठीक है, मुसलमान है माशाल्लाह, ईमान वाली है, ठीक है, तो ईमान वाले के नजदीक तो कुफर और काफिरी जो है ये तो दुश्मन है। ठीक है, काफिर तो ईमान ईमान वाले का दुश्मन होता है, लेकिन कितने माशाल्लाह अच्छे ईमान वाले हैं हम, कि हम तो काफिर से इल्म हासिल करते हैं ना। ठीक है, अंग्रेजी का इल्म भी हासिल करते हैं, उनके साइंस का इल्म भी हासिल करते हैं, और टेक्नोलॉजी का इल्म भी हासिल करते हैं, क्योंकि भाई इसको नफा बख्श समझते हैं ना, तो अब काफिर से भी इल्म हासिल कर रहे हैं। ठीक है, तो इल्म हासिल करने वाला जो होता है वो तो हर जगह से, तो फिर खाविंद से भी इल्म हासिल करना है ना। ये तो नहीं कि वो खाविंद है तो खाविंद के साथ तो अलग किस्म का ताल्लुक होता है, तो इल्म कोई नहीं हासिल करना मुझे खाविंद से, नहीं, इल्म हासिल करना। तो ये इल्म हासिल करने वाले रिलेशनशिप जो है ये खाविंद के साथ रखेंगी, तो फिर ऐसी सिचुएशंस के अंदर खाविंद को बताना जो है ये भी जायज होगा, और ये फायदेमंद बन जाएगा। ठीक है, ये फायदेमंद बन जाएगा, क्योंकि भाई आपने उससे सीखना है ना कि जी मैं आपके घर वालों को कैसे हैंडल करूं। ये कोई थोड़ी कि मैं नहीं हैंडल करना, मैंने नहीं सीखना, मैंने हैंडल नहीं करना, आप आए और आप इसको हैंडल करें, ये तो जाहिल इंसान का काम होता है ना, जो कि जाहिल रहना चाहती है, इल्म नहीं हासिल करना चाहती, वो कहती है तुम मेरा मसला हल करो। ठीक है, तो जाहिलों वाली हरकतें नहीं करनी चाहिए, इससे जाहिर में नुकसान होता है, फिर वो बहुत बड़ा नुकसान बन जाता है, खाविंद भी आपसे जो है वो गुस्सा करेंगे, और वो अगर या तो खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो मामला और खराब हो जाएगा, क्योंकि ये उनका काम है ही नहीं, वो अपना दूसरे का काम करेंगे। कहते हैं ना कौवा हंस की चाल चला अपनी चाल भी भूल गया, तो तो खाविंद बीवी का काम करना शुरू कर देगा तो वो अपनी चाल भी भूल जाएगा, खाविंद बनना तो भूल जाएगा, वो बीवी बनना शुरू हो जाएगा। तो आपको ऐसा खाविंद चाहिए जो कि बीवी बनता हो, नहीं बीवी नुमा खाविंद चाहिए, तो ऐसा नहीं चाहिए ना इंसान को। खाविंद खाविंद होना चाहिए, बीवी बीवी होनी चाहिए, औरत औरत होनी चाहिए, मर्द मर्द होना चाहिए। ना औरत को मर्द बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ना मर्द को औरत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो अच्छे अंदाज में खाविंद को ये बात बताएं, हमेशा अपने खाविंद को हौसला दें कि वो अपने घर वालों के साथ अच्छा ताल्लुक रखे, अपनी माँ बहन यानी उसकी माँ उसकी बहन उसके वालिद सबके साथ अच्छा ताल्लुक रखने के लिए अपने शौहर की हमेशा हौसला अफजाई करती रहे। ठीक है, तो ये आपके अपने फायदे में होता है, बज़ाहिर लगता है कि उसका फायदा होगा आपका नुकसान हो जाएगा, लेकिन ये बज़ाहिर लगता है बल्कि शैतान लगवाता है, हकीकत ऐसी नहीं होती, बल्कि इसके अंदर आपका फायदा ही फायदा होता है, दुनिया का भी फायदा और आखिरत का भी फायदा, सिर्फ आखिरत का भी नहीं बल्कि दुनिया का भी फायदा होता है। ठीक है, पोजेसिव बनने से नुकसान होता है, पोजेसिव का मतलब होता है कि बस मेरा, है ना, वो होता है ना बहुत सारी बीवियों को ये खप चढ़ा हुआ होता है कि बस ये खाविंद मेरा है और किसी का नहीं है। ठीक है, तो अब वो इस चक्कर में वो यानी सौकन तो सौकन है ना कि भाई सौकन का नहीं है, मेरी सौकन का नहीं है बल्कि मेरा है, यानी दो बीवियों के दरमियान लड़ाई हो रही है, एक बीवी कह रही है कि मेरा है, दूसरी बीवी कह रही है कि मेरा है, आजकल तो वो सिलसिला ही खत्म हो गया, ठीक है ना, इल्ला माशाल्लाह कहीं पे दो बीवियां तीन बीवियां होंगी, वरना तो कहीं पे नहीं होती है ना, एक ही बीवी होती है बस। तो अब जो है वो लड़ाई किसके साथ शुरू, माँ के साथ शुरू, ठीक है ना, कि नहीं माँ का नहीं है मेरा है, बहन के साथ लड़ाई शुरू के बहन का नहीं है मेरा है, वालिद के साथ लड़ाई शुरू के नहीं ये अपने बाप का नहीं है मेरा है। तो ये मेरा वाला जो मसला है ना, ये पोजेसिवनेस कहलाता है, और ये बंदे के लिए दुरुस्त नहीं है, ना बंदी के लिए दुरुस्त है ना बंदे के लिए दुरुस्त है। ठीक है, तो इसके बजाय जो है वो भाई उसकी माँ है, उसकी बहन है, उसकी उसके वालिद हैं, उसके रिश्तेदार हैं, तो वो अच्छा इंसान उसी वक्त बन सकता है जब वो अपने हर रिश्ते के साथ अच्छा हो, सिर्फ बीवी के साथ अच्छा हो करके कभी भी कोई खाविंद अच्छा इंसान नहीं बन सकता, कि सिर्फ बीवी के साथ अच्छा है और माँ के साथ बुरा है और बहन के साथ बुरा है। भाई अगर आपको अच्छा इंसान चाहिए, अपने खाविंद के अंदर एक अच्छा इंसान चाहिए, तो वो तो उसी वक्त होगा ना जब वो अपनी माँ के साथ माँ के हुकूक अदा कर रहा होगा, बहन के साथ बहन के हुकूक अदा कर रहा होगा, वालिद को वालिद के हुकूक अदा कर रहा होगा, और आपको आपके हुकूक अदा कर रहा होगा, तभी तो वो अच्छा इंसान बनेगा, तभी तो अल्लाह ताला की रहमत उसको मिलेगी। और अगर वो दूसरों के साथ बुरा और आपके साथ अच्छा, तो उसको अल्लाह की रहमत तो हरगिज हरगिज नहीं मिलेगी ना, तो फिर वो अच्छा इंसान कैसे बनेगा, वो तो फिर एक नुकसानदेह इंसान बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें फिर ये भी ख्याल रखना चाहिए कि भाई आप जिस तरह से चाहती हैं ना कि आपका ताल्लुक आपके घर वालों के साथ अच्छा हो, ये ना हो कि आपका ताल्लुक खाविंद कहे कि नहीं तुम्हें कोई जरूरत नहीं है अपने घर वालों के साथ ताल्लुक रखने की, तो इसी तरीके से आप भी जो है वो खाविंद के बारे में यही रवैया रखें कि भाई वो भी अपने घर वालों के साथ अच्छा ताल्लुक बना करके रखें। ठीक है, अच्छा किसी ने यहाँ पे लिखा है कि क्या हम हस्बैंड को ये भी कह सकते हैं कि आप मेरे वालिदा के साथ भी ताल्लुक ठीक करें या उनसे बातचीत करें, कह सकते हैं, देखें उनको करना चाहिए ऑफ कोर्स, क्योंकि आपकी वालिदा उनकी भी वालिदा है, जिस तरह उनकी वालिदा आपकी वालिदा है उसी तरह आपकी वालिदा उनकी वालिदा है। ठीक है, ये जो शादी का ताल्लुक अल्लाह के नाम के ऊपर बनाया जाता है ना, तो इससे जो है वो वालिदैन भी शेयर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे हजरत तो ये फरमाया करते थे कि शादी से पहले इंसान के दो माँ बाप होते हैं और शादी के बाद चार माँ बाप हो जाते हैं। ठीक है, दो के ऊपर दो और ऐड हो जाते हैं, तो आप उनको कह तो सकती हैं, लेकिन वही बात है कि उनकी उस्तानी बन करके उनको ना कहिएगा, क्योंकि उस्तानी साहब जो है ना, उन साहिबा होती है, उनका एक अलग अंदाज होता है ना अपने शागिर्द को बोलने का। ठीक है, तो उस्तानी बन करके उसको नहीं कहिएगा, बल्कि उसकी कम से कम कॉलीग बनकर के उसको कहिए, ठीक है ना। जिस तरह से एक एक अच्छा दोस्त जो है वो किसी दोस्त को अच्छा मशवरा देता है, ठीक है, कि अगर ऐसा भी कर लें तो आपके लिए अच्छा है और हमारे सबके लिए अच्छी अच्छी बात है ना ये। इस तरीके से आप अपने बराबर वाले किसी को जो है वो समझा रही होती हैं, तो इस तरह से जरूर उसे समझाना चाहिए, ठीक है, और कम से कम इस तरह से, वरना तो हाविंद को बड़ा समझना, ये ज्यादा प्रॉपर है हमारे दीन की तालीम के मुताबिक, ठीक है। तो बीवी को हाविंद को मिलकर बड़ा समझना चाहिए, तो जिस तरह से छोटा जो है वो बड़े को बात समझाता है, ठीक है भाई, ये तो कोई वो नहीं है ना कि नहीं, बड़े को तो बात आप नहीं बोल सकते, कोई अच्छी बात बड़े को नहीं बता सकते, ऐसा तो नहीं है, लेकिन अच्छे अंदाज में बड़े को भी अच्छी बात बताई जा सकती है और बताना चाहिए, ठीक है। अच्छा, आखिरी पॉइंट इस उनवान के तहत, कि एक पॉइंट ये है जो 10वां पॉइंट है, कि ससुराल में बैठ के अपनी जुबान से अपनी तारीफें ना करती रहें, ठीक है। इट इज मोस्ट इम्प्रेसिव व्हेन अदर पीपल डिस्कवर योर क्वालिटीज विदाउट योर हेल्प। विदाउट योर हेल्प से मुराद अदद का ये है कि अपनी जुबान से जो है ना वो दूसरों को अपनी क्वालिटीज की तरफ गाइड करने की जरूरत नहीं है। फरमाते हैं कि ये ज्यादा बेहतर है कि आपके बताए बगैर लोगों को आपके अंदर खूबियां नजर आए, ठीक है, यानी जुबान से कहने की जरूरत नहीं है, अमल से लोगों को अपनी खूबी दिखाने की जरूरत, ठीक है। खूबी जो है वो अमल से जाहिर होनी चाहिए, जुबान से जाहिर नहीं होनी चाहिए, वरना आपको पता है ना कि उर्दू जुबान में बड़ा जबरदस्त मुहावरा है इसके लिए, क्या है वो, कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, जो अपनी तारीफ में अपनी जुबान से कर रहा होता है ना, तो उसको ये कहा जाता है मियाँ मिट्ठू, ठीक है। तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना कि आपको लोग मियाँ मिट्ठू समझना शुरू कर दें, तो कभी भी ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो शुरू में लोग आपको मियाँ मिट्ठू समझेंगे, और जब जरा ज्यादा आप अपने मुंह से तारीफें शुरू कर देंगे ना, तो फिर लोग आपको नफसियाती मरीज समझना शुरू कर देंगे, नफसियाती मरीज, ये इसको तो कोई मेंटल इलनेस है, ठीक है। तो यहां तक नौबत चली जाती है, तो लोग आपको फिर ना पागल समझना शुरू कर देते हैं, ये तो बिल्कुल ही यानी गॉन केस हो चुकी है ये तो, ठीक है। तो कभी भी अपने मुंह से अपनी तारीफें बयान ना किया करें। ये जो अपने मुंह से अपनी तारीफ बयान करने का काम है ना, ये इंतहाई यानी एक्सट्रीम केस के अंदर करने का काम, कर सकते हैं इसको, ये काम करना पड़ता है बल्कि कभी, लेकिन आम हालात में नहीं, बल्कि बहुत ही कोई खास हालात के अंदर इसकी गुंजाइश बनती है, और वो भी बहुत एहतियात के साथ, बहुत एहतियात के साथ, कभी अपनी कोई अच्छी बात जो है वो किसी के सामने बयान कर की जा सकती है, ठीक है। तो कभी इसकी नौबत आती है, मैं अपने अपने मशायख को देखा, कभी वो ऐसी बात करते हैं, लेकिन बहुत एहतियात के साथ कर, और ये वो लोग होते हैं जिनके बारे में दुनिया पहले से कन्विंस्ड होती है कि ये तो बहुत नेक नेक लोग हैं, ठीक है, फिर किसी खास वजह से वो कोई अपनी अच्छी बात कोई बयान कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम तो ऐसे नहीं है ना कि लोग हमारे बारे में विलायत के का गुमान रखते हैं, तो हम हमारे बारे में तो पहले लोग जो है वो यानी खास अच्छा ओपिनियन नहीं रखते, फिर उसके ऊपर जब हमसे तारीफें सुनेंगे अपने यानी अपनी तारीफ अपनी जुबान से सुनेंगे, तो फिर उसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट होता है लोगों के ऊपर, ठीक है। अच्छा, कोई सवाल अगर इस मौजू पे और हो किसी से, तो आप पूछ लीजिएगा लिख करके। बाकी अगला मौजू हम शुरू कर लेते हैं सास के साथ ताल्लुक, यानी रिलेशनशिप मैनेजमेंट में पहले खाविंद के साथ रिलेशनशिप मैनेजमेंट हजरत ने समझाई, फिर ससुराल वालों के साथ इन जनरल, और उसके बाद फिर सास के साथ ताल्लुक, और उसको फिर फरमाते भी हैं कि अब तीसरा है सास के साथ ताल्लुक। चूंकि बहू और सास का मसला बहुत अहम होता है, ठीक है, वो माँ होती है, ठीक है, और माँ आपको पता है, जो माएँ हैं उनको पता है कि माँ क्या चीज होती है, ठीक है, तो आखिर को वो आपके शौहर की माँ है, तो उसका इंतहाई सबसे गहरा तरीन ताल्लुक है आपके शौहर के साथ। इसी वजह से फिर जब बहू साहिबा आती हैं तो फिर वो एक बड़ा अहम मसला बन जाता है। लगता है कि जब से इंसानियत का मामला शुरू हुआ है उस वक्त से ये सिलसिला चला आ रहा, ठीक है, हालांकि हजरत उस वक्त दुनिया में नहीं रहते थे जब इंसानियत शुरू हुई थी, ठीक है। तो फिर ऐसी बात क्यों कही, क्योंकि इतने लोग इस किस्म के मसले लेकर के हजरत के पास आते थे, इतने लोगों ने इस किस्म की बातें हजरत से शेयर करी, हजरत से पूछा, हजरत को बताया कि गोया के ये इंसानियत की इब्तिदा से ये मसला चल रहा है, गोया के, हालांकि हजरत उस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं थे जब इंसानियत की इब्तिदा हुई थी, ठीक है। इसलिए इसके नुकात अलग बताए जा रहे हैं, चूंकि सास बहू दोनों औरतें हैं तो उनके झगड़े भी औरतों वाली बातों से ही होते हैं, ठीक है। अब जाहिर है अल्लाह ताला ने औरत की फितरत अलग बनाई है, वो तो हम स्कूल कॉलेज के जरिए से उस फितरत को मस्क करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब वो औरत औरत नहीं रहती, वो कुछ एक अजीब व गरीब किस्म की चीज बन जाती है, ना तो वो मर्द बन सकती है, लेकिन एक दरमियान की कोई सूडो किस्म की सूडो मर्द बन जाती है, ठीक है, लेकिन वो उसकी फितरत होती नहीं है, वो तो फितरत खराब करके हम उसको बनाते हैं ना, जब उसको करियर ओरिएंटेड बनाते हैं, उसको जो है वो मर्दाना किस्म की लाइन के ऊपर डालते हैं, वरना फितरत तो अल्लाह ताला ने औरत की अलग बनाई है, मर्द की अलग बनाई है, औरत की अलग बनाई, ठीक है। तो जाहिर औरत की फितरत, फितरत वाली बातें होंगी, मर्द वाली तो बातें उसकी फितरत का हिस्सा नहीं होती ना। अच्छा, किसी ने यहाँ लिखा कि अगर कोई अल्लाह के हुक्म की वजह से सास ससुर के साथ वालदैन वाली डीलिंग करे, लेकिन अपनी तरफ से दिल में वालदैन वाली कैफियत नहीं आती हो तो कैसे बेहतरी लाए। अगर अल्लाह के हुक्म की वजह से सास ससुर के साथ वालदैन वालदैन वाला बर्ताव करे, लेकिन दिल में उनके लिए वालदैन वाली कैफियत नहीं आती हो तो कैसे बेहतरी लाए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो अल्लाह के हुक्म की खातिर अपने दिल के जज्बात के खिलाफ जा करके उनकी इज्जत कर रहा है और उनकी जो है वो आउटवर्डली अल्लाह के हुक्म की वजह से रिस्पेक्ट कर रहे हैं ना, तो इसके लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, इसके लिए तो बहुत बड़ा आजर है, ठीक है, क्योंकि ये अपने नफ्स के खिलाफ अपने परवरदिगार के हुक्म को तरजीह दे रहा है, तो इसको तो डबल सवाब मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें आसानी पैदा करने के लिए बेशक अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह आप मेरे दिल में भी इनकी मोहब्बत को पैदा कर दीजिए, ठीक है, मेरे दिल में भी, क्योंकि दिल तो अल्लाह के हाथ में है ना, तो अल्लाह ताला से दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला दिल की कैफियत भी ऐसी बना देंगे, तो फिर आपके लिए और आसानी हो जाएगी, ठीक है। और मजे की बात यह है कि अल्लाह ताला के कंट्रोल में सिर्फ आपका दिल को थोड़ी है, अल्लाह के कंट्रोल में तो बाकी हालात भी तो अल्लाह के कंट्रोल में ही है ना, तो जिन हालात की वजह से आपके दिल में उनकी मोहब्बत पैदा नहीं हो रही है, तो अल्लाह ताला क्या उन हालात को तब्दील नहीं कर सकते, ठीक है। अल्लाह ताला तो ऐसे हैं जो कि पूरी की पूरे सिचुएशन को ही तब्दील कर सकते, खाली आपके दिल को नहीं, पूरी सिचुएशन को ही तब्दील कर सकते हैं, तो अल्लाह ताला से दुआ तो असल चीज है ना करने की, पहले करने वाली चीज। अनफॉर्चुनेटली हमारे अल्फाज ही इंतहाई खराब अल्फाज होते हैं, हमारे अल्फाज क्या होते हैं कि यार अब तो बस दुआ ही रह गई है, कहती है ना, कभी सुना आपने आपस में एक दूसरे से या अपनी जुबान से कभी ये सुना कि अब तो कुछ नहीं कर सकते, अब तो दुआ ही कर सकते हैं, इस लफ्ज से क्या क्या चीज समझ में आती है, इस जुमले से है? कि दुआ तो आखिर में करने वाली चीज थी, जब कुछ नहीं रह गया तब दुआ कर रहे हैं, ठीक है, पहले तो खुद करना था जो करना था, अब नहीं कर सके तो अब अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, अब अल्लाह से दुआ ही रह गई है, ये अल्लाह को ये समझ रखा है हमने, यानी नाउज बिल्दा लास्ट ऑप्शन कौन है? अल्लाह, अल्लाह इज आवर लास्ट ऑप्शन। हालांकि क्या अल्लाह का यह मुकाम है कि अल्लाह हमारा आखिरी ऑप्शन हो? अल्लाह तो पहला ऑप्शन है, बल्कि अल्लाह ही है, जो कुछ है बस अल्लाह ही है। तो हमारे काम तो अल्लाह से, दुआ से शुरू होने चाहिए, क्योंकि दुआ जो है ना, ये कोई वो नहीं है, कोई क्या कहते हैं, कोई टूल नहीं है ये दुआ, जैसे हथौड़ी हो, ठीक है? तो अब जो है ना, वो आपको कील ठोकनी है, तो आपको कील ठोकने के लिए हथौड़ी की जरूरत पड़े, तो जी जब कील ठोकने की जरूरत पड़ेगी तब मैं हथौड़ी को इस्तेमाल कर लूंगी, ठीक है? या कोई और इस किस्म का आला टूल। दुआ कोई ऐसा टूल, कोई आला तो नहीं है। दुआ क्या है? दुआ तो यानी समझाने के लिए अगर ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाए तो ये कहा जा सकता है कि दुआ तो अल्लाह है, राइट? समझने के लिए, मतलब दुआ इटसेल्फ अल्लाह नहीं है, लेकिन दुआ का मतलब क्या है? अल्लाह को पुकारना, अल्लाह को शामिल करना, अल्लाह से मदद मांगना, ये है ना दुआ। तो अल्लाह जो है वो आखिर में आएगा हमारे मामलात के, अल्लाह तो सबसे पहले आएगा, और अल्लाह फिर दरमियान में भी मौजूद रहेगा, काम के दौरान भी अल्लाह ताला को शामिल रखना है अपने काम के, और आखिर में अल्लाह ताला से जो है वो आसानी की और कबूलियत की दुआ भी करनी। तो अल्लाह इब्तिदा में भी, अल्लाह दरमियान में भी, अल्लाह आखिर में भी, ठीक है? तो हजरत ने बेहतरीन एक नुक्ता लिखा था, जिसको किसी अल्लाह वाले ने लिखा भी है, और बस वही है कि किसी वजह से अल्लाह ताला उसको शेयर करने की तौफीक नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट है बड़ा जबरदस्त, बहुत बेहतरीन, कि फरमाया कि जो अपनी औलाद की तरबियत में दुआ को शामिल नहीं करता ना, वो अपने सबसे बड़े वो अपनी सबसे बड़ी ताकत से महरूम हो जाता है, समथिंग लाइक दैट, यही कुछ अल्फाज इसी तरह के। वो औलाद की तरबियत के कुछ नुकात हैं, उनमें फरमाया कि जो दुआ को शामिल नहीं रखता ना, वो अपनी सबसे बड़ी ताकत से महरूम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ताकत तो अल्लाह से मिलनी है ना, और अल्लाह से दुआ के जरिए से ताकत हासिल करनी। तो बहरहाल आपके जो सवाल था वो तो बगैर ऐसा नहीं था, लेकिन दुआ करें, लेकिन अल्लाह ताला आपके दिल को भी बदल देगा और उनके लिए मोहब्बत की कैफियत अदा कर देगा, बल्कि अगर अल्लाह चाहेगा तो उनको भी तब्दील करके ऐसा बना देगा कि आप खुद ही उनसे मोहब्बत करनी शुरू हो जाएगी, ठीक है? अच्छा, तो सास के साथ ताल्लुक में फिर फरमाया कि किचन में सास की मंशा का ख्याल रखें। किचन जो होता है ना, वो सबसे अहम जगह होती है खवातीन के घर के अंदर, ठीक है? मर्दों का जो घर होता है ना, जिसमें वो सिंगल मर्द रहते हैं, ठीक है? तो वहां पे अक्सर मर्दों के साथ ये होता है कि किचन नाम की कोई चीज नहीं होती उस घर के अंदर, ठीक है? क्योंकि उन्होंने खाना जो है वो बाहर जाके खाना होता है, वो रेस्टोरेंट से खाना खाएंगे या खाना ऑर्डर करेंगे, या जो है ना वो किचन में अगर जाएंगे भी तो बहुत ही जल्दी जल्दी कुछ कर करा करके बस खत्म। बहुत कम मर्द होते हैं जो कि फिर उनको खाना पकाने की जो है ना वो आदत लग जाती है, तो फिर वो किचन 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 करते रहते हैं, वरना कोई मर्द ऐसा नहीं करता, ठीक है? लेकिन औरतों का मामला ऐसा नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ताला ने औरत की फितरत घरदारी की बनाई है, असल फितरत घरदारी की बनाई है, और घरदारी के अंदर जो है वो किचन एक बड़ी अहम चीज होती है, ठीक है? तो फरमाया कि सबसे पहली बात कि ऑर्गेनाइज किचन सो दैट शी कैन नेविगेट इजिली, यानी सास की नेविगेशन, यानी सास जो है ना वो अगर आप अपने किचन को इस तरह सलीके के साथ रखें कि सास ने अगर किसी वक्त किचन में आकर कोई काम करना है तो वो आसानी के साथ चीजों को ढूंढ ले और अपना काम कर सके, ठीक है? जाहिर है ये उसी वक्त होगा कि जब सास साहिबा जो है वो आपके साथ आकर के रह रही है, आप सास के साथ जाके नहीं रह रही, ठीक है? जैसे कि आप आपके हस्बैंड जो है वो मुल्क से बाहर या शहर से बाहर किसी जगह काम करते हैं, तो वो अब उनकी अम्मी आकर के उनके साथ रह रही हैं, तो फिर जाहिर है वो आपके किचन होगा और वालदा जो है वो वहां पर, तो उनको नहीं पता कि आपने कौन सी चीज कहाँ पे कैसे रखी है। Is it the state of Tawbah that was explained in last Monday's men's class to be always in state of Dua and Tawbah? State of Tawbah वो तो गुनाह को गुनाह समझने वाली कैफियत को एक्सप्लेन किया था उस वाली क्लास में ना, मर्दों वाली क्लास में। तो यहाँ पर अगरचे के अल्लाह ताला की तरफ ध्यान तो कॉमन ही है, दुआ की हालत में भी अल्लाह की तरफ ध्यान और तौबा की हालत में भी अल्लाह की तरफ ध्यान बंदे का रहता ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा आप तफसीलन देखें तो दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, दुआ में वैसे तौबा जो है ना वो शामिल रहनी चाहिए, तो दुआ समझने के तौबा जो है वो दुआ के लिए प्री रेक्विसिट है, प्री रेक्विसिट ठीक है, या शर्त के स्टेट ऑफ दुआ में रहने के लिए तौबा की स्टेट में रहना ये बड़ा जरूरी है। अगरचे कि हाँ जरूरी है, शर्त है बस, ठीक है, क्योंकि वही बात है ना, आप जिससे मदद मांग रहे हैं तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप उससे मदद मांग भी रहे हैं और साथ साथ उसके साथ बदतमीजी भी करे चले जा रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है? किसी के साथ भी आप कह रहे हैं कि भाई आप प्लीज मेरी मदद कीजिए, लेकिन साथ साथ आप उसको जो है ना वो गुस्सा भी दिलाए चले जा रहे हैं, और इधर से गुस्सा दिला रहे हैं उधर से उसके उससे मदद मांग रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है? क्या आप ऐसा करेंगे कभी किसी के साथ? तो अल्लाह के हुक्म को हुक्म ना समझना, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी को बुरा ना समझना, दिल में ये कैफियत भी है और साथ साथ अल्लाह ताला से ए अल्लाह ये कर दीजिए, अल्लाह वो कर दीजिए, अल्लाह मेरी मदद कर दीजिए, अल्लाह मेरे दिल को बदल दीजिए। भाई आप यानी दिल में मोहब्बत पैदा कर दीजिए, इनको बदल दीजिए, मतलब मेरे लिए मेरे दिल में आप जो है वो सास ससुर की मोहब्बत पैदा कर दीजिए, और साथ साथ मैंने आपकी बात नहीं माननी, आपकी बात तो मानने के काबिल ही नहीं है, ये भी दिल में चल रहा है। इस वजह से कहा कि तौबा का दिल में होना ये दुआ के लिए शर्त है, वरना दुआ दुआ नहीं है, वो कोई और ही आप तमाशा कर रहे हैं अल्लाह ताला के साथ। ठीक है, हाँ ये और बात है कि आपसे गुनाह छूट नहीं रहे, गुनाह को बुरा समझ रही है, गुनाह छूट नहीं रहे, अब दुआ कर रही है कि अल्लाह छुड़वा भी दीजिए, ठीक है, तो वो तो बिल्कुल सही है कि मुझसे छूट नहीं रहे गुना, आप मुझसे गुना छुड़वा दीजिए, लेकिन ये कोई थोड़ी सही है कि मैं गुना को गुना समझती नहीं हूं और उसको नुकसानदेह समझती नहीं हूं, बस आप जो है मेरा फलाना काम करवा दीजिए या कर दीजिए, ये नहीं है, ये नहीं होता। ठीक है, अच्छा चले, आपका अच्छा सवाल था। वो तो फरमाते हैं कि आप अपने किचन को इस तरह सलीके के साथ रखें कि सास ने अगर किसी वक्त किचन में आकर कोई काम करना है तो वो आसानी के साथ चीजों को ढूंढ ले और अपना काम कर सके। जब आपने किचन में कोई चीज बनानी हो तो हमेशा अपनी सास से भी पूछें कि वो क्या चाहती हैं, ताकि उनकी तजवीज को भी शामिल किया जाए। अगर पकाने का इख्तियार आपके हाथ में है, ठीक है, यानी जैसे आपका किचन है, आपका घर है, तो वो आकर के आपके साथ रह रही हैं, ठीक है, या उन्होंने माशाल्लाह आपको ऐसी सासें भी शायद इस दुनिया में आज एग्जिस्ट करती होंगी कि जब शादी हो गई बेटे की तो बहू के हाथ में दे दिया कि जी अब तो मैं मुसल्ला संभाल रही हूँ आपके हवाले, अब आप जो है वो जो चाहे किचन के अंदर करें, मैंने अब किचन में बस जरूरत ना होगी, वरना मैंने नहीं आना, मैंने तो अल्लाह ना करना है, ठीक है, तो फिर वो किचन आपका किचन बन जाएगा। तो अगर पकाने का इख्तियार आपके हाथ में है तो मेन्यू बनाते हुए यानी क्या पकाना है तो वो बनाते हुए अपनी सास की राय जरूर लें, और अगर आपकी सास चाहती हैं कि मैं अपनी डिश खुद बनाऊंगी तो उनको डिश बनाकर खाने में रखने की इजाजत जरूर दें। ठीक है, ताकि वो भी अपने तजुर्बे को और अपनी महारत को लोगों के सामने जाहिर कर सकें। ठीक है, उनको कोई दुश्मन ना समझें कि बस दुश्मन मुझसे आगे ना बढ़ जाए और दूसरों की निगाहों में दुश्मन की इज्जत ना हो जाए। भाई वो उनका अलग रोल है, आपका अलग रोल है, इसकी आपस में कोई टकराव होता ही नहीं है। वो माँ है, आप बीवी हैं, एक अल्लाह के बंदे की। ठीक है, तो खाम खा जो है ना, वो जिसको कहते हैं ना, वो किसी और के साथ जा करके जो है वो टकरा जाना। भाई अपने रास्ते पे चलो यार, जैसे मिसाल के तौर पर दो लाइन ट्रैफिक, एक उधर जाने वाली ट्रैफिक है, एक इधर आने वाली ट्रैफिक है, तो भाई ये इधर अपने लाइन पे चलती रहे, वो अपनी लाइन पे चलती रहे। अब कोई अगर कहे कि नहीं मुझे तो उधर जाना चाहिए, तो वो उस लाइन पर आएगा, तो फिर क्या होगा, टकराव होगा ना फिर, राइट। तो उनका अलग रास्ता है, आपका अलग रास्ता है, खामखा जो है वो पंगा लेने की क्या जरूरत है भाई। ठीक है ना, उनको आपके साथ लेना चाहिए ना आपको उनके साथ लेना चाहिए। अब वो अगर बात नहीं समझ रही, तो इसका मतलब ये क्यों थोड़ी है कि नहीं वो नहीं समझ रही तो इस वजह से मैंने भी उल्टा काम करना है, तो जाहिर वाला अंदाज होता है, ये तो नहीं करना चाहिए ना। तो वो डिश बनाना चाह रही है तो ठीक है, मोस्ट वेलकम, अच्छी बात है, आप बना लीजिए। ठीक है, ख्याल रखें कि कभी भी ये ना कहें कि ये मेरा घर, हमेशा कहें कि ये हमारा घर। ठीक है, ये पहले भी बात हो चुकी है और अगेन हजरत ने बात रिपीट करी है, क्योंकि ये इंतहाई जहरीला किस्म का जुमला होता है कि जहां पर चंद लोग घर में रह रहे हैं और कोई जो है ना वो मेरा मेरा करना शुरू हो जाए ना, तो इससे बड़ा जहर वो अपनी जुबान से नहीं बोल सकता। ठीक है, तो इससे तो बिल्कुल ऐसे बचें कि जैसे इंसान जहर से बचता है। ठीक है, अच्छा, कोई मुश्तरका सरगर्मी अपनाएं, टाइम तो हो गया है बस ये पढ़ के, आज क्लास रन करते हैं, कि खाविंद बहू और सास के दरमियान कोई मुश्तरका एक्टिविटी यानी सरगर्मी लाजमन होनी चाहिए। सबसे बेहतर मुश्तरक सरगर्मी ये है कि बहू अपनी सास के साथ मिलकर कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ना शुरू करे। ठीक है, बेहतर सरगर्मी, वरना तो जिन जगहों पे सास बहू की अच्छी बन रही होती है ना, तो उन्होंने एक सरगर्मी अपनाई भी होती है। वो कौन सी सरगर्मी होती है जरा बताए ना, जो कि आम तौर पर हमारे घरों के अंदर मुश्तरक सरगर्मी जो सास बहू की होती है वो कौन सी होती है, तो बताए। यही बात माशाल्लाह, रिश्तेदारों की यही बात। हाँ, शॉपिंग होती है, शॉपिंग, मेरे जहन में वैसे शॉपिंग था। ठीक है, यानी जो शॉपिंग हराम तो नहीं है ना, मतलब जायज सुलूक में रहते हुए शॉपिंग करना तो ये हराम नहीं है, आपने तो बिल्कुल ही जो है ना वो बदतरीन हराम की मिसाल दे दी, गीबत करना। तो गीबत तो भाई हराम है, वो तो ना तो मिलके करनी है किसी के साथ, ना जो है वो अकेले करनी। ठीक है, हाँ, दूसरों की खैर ख्वाही, 100% खैर ख्वाही की नीयत से किसी को डिस्कस करना ताकि उनकी मुश्किल को हल किया जा सके। ठीक है, तो अगर दिल में आपकी अगले बंदे की खैर ख्वाही होगी, तो फिर सास के साथ मिलकर के उसके बारे में बात करना खैर ख्वाही की नीयत से, तो फिर ये गीबत नहीं हो। ठीक है, तो ये एक अच्छी एक्टिविटी है, यानी खैर ख्वाही की नीयत से किसी तीसरे रिश्तेदार के बारे में बात करना, ये अच्छी नहीं, बिकॉज दीन सारा सरासर खैर ख्वाही का नाम। ठीक है, तो क्या सास के साथ मिलकर के आप किसी रिश्तेदार की खैर ख्वाही नहीं कर सकते, ये तो नहीं कहा कि खैरख्वाही करो तो बस अकेले करो, सास के साथ मिलके ना करो। इस खैरख्वाही के लिए आप अपने साथ दूसरे लोगों को भी मिलाएं, सास के साथ मिलके खैरख्वाही करें, गीबत ना करें। ठीक है, गीबत कहते हैं ये बगैर खैरख्वाही के आप किसी को डिस्कस करें, उसको गीबत कहते हैं, और वो बदतरीन गुनाह है और उसके ऊपर अजाब भी बदतरीन होगा ऑफकोर्स। ठीक है, लेकिन शॉपिंग ये आमतौर पे देखा गया कि जहां सास बहू की अच्छी बनती है, तो वहां पे वो साथ शॉपिंग करने के लिए जरूर जाती है। ठीक है, तो हजरत यहाँ पे जो है ना वो बेहतर बता रहे कि ज्यादा अच्छी सरगर्मी ये है कि कुरान मजीद की तालीम के अंदर मुश्तरक हो जाए। अब खाली तर्जुमे से मुराद ये नहीं है कि बस तर्जुमे ही पढ़े, तफसीर ना पढ़े, ये को थोड़ी कह रहे हैं हजरत, या जो है वो मसाइल का इल्म हासिल ना करें, मारिफ व मसाइल की दर्स कुरान के अंदर ना जाएं, ये कोई थोड़ी कह रहे हैं। मतलब कुरान से रिलेटेड कोई एक्टिविटी हो तो ये सबसे बेहतर एक्टिविटी है। तो उन्होंने लिखा कि हमारे घर में कुछ खाने की चीजें बनाना, जैसे खजूरें वगैरह। खजूरें आप बनाती कैसे हैं, वो तो दरख्त में उगती है। नहीं, खजूरों की आप कुछ बनाती होंगी, खजूरों तो नहीं बना सकते। अच्छा खैर, तो फरमाते हैं कि सबसे बेहतर मुश्तरक सरगर्मी यह है कि बहू अपनी सास के साथ मिलकर कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ना शुरू करते हैं। हमने ये देखा है कि कुरान पाक की एक्टिविटी सास और बहू के दरमियान के गैप में पुल का काम देती है, ब्रिज का काम देती है। इसी तरह जो पोते दोहते होते हैं वो भी सास और बहू के दरमियान के खला में पुल का किरदार अदा करते हैं। ठीक है, यानी जब पोते पोतियां हो जाते हैं तो भी वो भी उनके साथ भी लगना होता है, क्योंकि सास भी लगी होती है। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे घरानों में जहां अखलाक ना सीखे ना सिखाए, तो वहां तो फिर हर चीज ही लड़ाई का सबब बन जाती है ना। अच्छी चीजें भी लड़ाई का सबब बन जाती हैं। तो पोते हो गए तो पोते साहब लड़ाई का सबब बन रहे हैं, वो उधर से खींच रही है पोते को, ये इधर से खींच रही है पोते को, वो अपने हिसाब से उल्टा काम कर रही है, अपने हिसाब से उल्टा काम कर रही है। तो उसकी वजह जो है ना, वो पोता नहीं होता, उसकी वजह ये होती है कि आपकी तरबियत नहीं हुई है। ठीक है, आपने इंसान बनना ना किसी ने आपको सिखाया ना आपने खुद सीखा। ठीक है, तो अब तो पोता भी जो है वो लड़ाई का सबब बनेगा, किचन भी लड़ाई का सबब बनेगा, हत्ता के कोई दीनी एक्टिविटी होगी ना वो भी लड़ाई का सबब बनेगी। जब इंसान इंसान नहीं बनता ना, तो दुनियावी एक्टिविटी एक्टिविटी तो क्या, दीनी एक्टिविटी लड़ाई का सबब बन जाती है। ये तो बहुत होता है। ये नहीं समझे कि दीनदार लोग जो हैं वो आपस में लड़ते नहीं है। भाई दीनदार बनने, अगर तरबियत के साथ दीनदार बने तब जो है ना वो दीन से फायदा होता है, वरना दीन भी नुकसान का सबब बन जाता है इंसान के लिए। असल चीज तो इंसान को इंसान बनना होता है ना। ठीक है, तो बस अल्लाह ताला बात की समझ और मन की तौफीक अता फरमाए। अपन क्लास खत्म करते हैं। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।